आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।
प्लीज ऐसी बातें ना करें, बस सिर्फ आपसे गुजारिश है, उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। जब भी आपको महसूस हो कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो मुझे जरूर इत्तला दें, मुझे खुशी होगी कि आपकी इस बड़ी खुशी में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी हो।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं।
नहीं, ऐसी बातें मत करें आप, बस ये ना भूलें कि अगर कोई काम हो तो मुझसे रابطہ जरूर कीजिएगा, मुझे आपके फोन का इंतजार है।
जरूर।
इजाजत है।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
लीजिए।
शुक्रिया शुक्रिया, दरवाजा बंद कर दें।
जी अच्छा,
बहुत अच्छा। ये देखें, ये रही जहरा सारनी साहब के खिलाफ रिपोर्ट और गिरफ्तारी का वारंट। अब क्या करना है?
अब हमें असली हरीफ का इंतजार करना होगा।
असली हरीफ?
जी, तूबा साहिबा। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को जेल नहीं जाने देंगी।
तो इसका मतलब है इस चेक में लिखी गई रकम हमें मिल जाएगी।
बिल्कुल मेरे दोस्त, दरअसल हमने जितनी रकम दी है उसकी दोगुना रकम हमें मिलेगी, उसके साथ कालीन और बेल्ट भी।
मक्कार कहीं के।
वो तो हुई। लेकिन मामला खत्म नहीं है, क्योंकि तूबा पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है।
रिपोर्ट दर्ज करा दे, हमने कोई जुर्म तो नहीं किया है। हमसे क्या मतलब, अगर उसका दामाद दो चक्कों का मुकाबला नहीं कर पाया, हमारा हर काम कानूनी है, मुआहदा हुआ है। जी हाँ, और फिर अगर रिपोर्ट कर भी दी तो हम भी मंसूर के खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे, कहेंगे कि उसने हमें धोखा देकर हमारी रकम लूट ली है।
ज्यादा तेजी ना दिखाओ, लगता है तुम भूल गए कि हमारा मकसद क्या है। हमें किसी भी तरह पुलिस को इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह। हम बैठकर तमाशा देखेंगे, जैसे ही उनका घरेलू झगड़ा अपने उरूज पर पहुंचेगा हम भी अखाड़े में उतर जाएंगे।
वाकई हो बहुत बड़े मक्कार तुम।
हम ऐसे ही, क्या किया जाए।
जी कौन है? मैं नहीं जानता, पूछो काम क्या है। मंसूर की बीवी का भाई है,
मतलब तूबा का बेटा।
हाँ, मुझसे बात करना चाहता है, क्या किया जाए।
ये लोग तो मेरी तवक्को से बहुत पहले हरकत में आ गए। ठीक है, मिल लो, बस याद रखना वो मुझे यहां ना देखने पाए, क्योंकि मुझे पहचानता है।
कह दो अंदर आए।
और हां, लचक बिल्कुल मत दिखाना, बस एक ही रास्ता छोड़ना उसके सामने, समझ रहे हो ना।
जाओ बेटे, मुझे अपना काम मालूम है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं उस खातून का भाई हूं जिनका चेक आपके पास है, जोहरा सारेमी।
बड़ी अच्छी बात है, तो अब भी ऐसे भाई हैं जो गैरत से आशना हैं।
बराए करम मौजू पर आए, अपना मुतालबा बताएं।
वाजे है, मुझे अपनी रकम चाहिए, एक एक पाई।
ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं थोड़ा मौका चाहूं तो।
मुझे अफसोस है, लेकिन तजर्बे से यह साबित होता है कि ऐसे मौके पर मौका देने का भी कोई फायदा नहीं होता।
लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बहन की कोई गलती नहीं है।
ठीक है, लेकिन उनका चेक हमारे पास है
और हम भी उसी चेक की वजह से अपने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं।
देखें, आप लोगों के घरेलू मामलात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में हर आदमी को अपने मसाइल हल करना चाहिए। मेरे पास तो एक चेक है और बस।
मैं इस चेक के बदले में आपको अपना चेक देता हूं, लेकिन आपको मुझे एक महीने की मोहलत भी देनी होगी ताकि अकाउंट भर सकूं मैं।
कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि एक महीने का मेरा नुकसान भी आप चेक में लिखें। कबूल है?
ठीक है, मंजूर है। मेरी बहन का चेक दे दे।
अपने बहनोई के बरखिलाफ पक्के इरादे के आदमी लगते हो।
बस एक गुजारिश है आपसे, बराए करम इस चेक के बदले जाने की इत्तला किसी को ना हो, खास तौर पे मंसूर को।
आप मुतमईन रहें, मैं राजदार आदमी हूं, आज ही मैं जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूंगा।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
हो तुम भी मक्कार,
तुम्हारी तरह से।
हेलो, जल्दी बोलो परवाना, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ज्यादा बात नहीं कर सकता। रो क्यों रही हो, क्या हो गया बताओ तो, क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आया, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, फरमाइए।
परवाना घर पे है?
आप
कह दे बाबक आया है।
ओहा, तो वो बाबक साहब आप हैं। खुदा का शुक्र के मरने से पहले आपकी जियारत हो गई। और क्या हाल है, रास्ता तो नहीं भूल गए?
मैं आपकी बात समझा नहीं।
समझोगे भी कैसे, मजे तो मारे गाजी मियां और धक्के सहे मुजावे। क्या सोच रखा था, सोच रहे थे सबको उल्लू बनाओगे?
मेरी समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं।
अरे समझोगे भी कैसे।
परवाना, बात क्या है, क्या हुआ?
शहजादे, मैं तो हार चुका हूँ भाई। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारी बीवी पर खर्च करता रहूं। जब से जेल से आई है यहीं पर डेरा डाल दिया है। हर रोज कहती है आजकल क्या होगा, मेरा शोहर विलायत से आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। मेरा शोहर क्या भूल हुई मुझसे जो उसकी माँ से शादी कर ली मैंने?
आपकी प्रॉब्लम क्या है?
देखो शहजादे, मुझे तो तुम मरा हुआ ही समझो, और हाँ उनका सामान भी बांध कर कोने में रख दिया है कि ये उसे ले जाएं। तुम इन्हें ले जाओ बस।
परवाने जाओ, अपना सामान ले आओ। अम्मी रोए ना, मौका मिलते ही आपसे मिलने आऊंगा। काश तुम्हारे बदन पर कुछ गोश्त भी होता, तब मैं बताता तुम्हें कि मैं क्या चीज हूं।
अच्छा आदमी है ना? कौन? अफशीन साहब? हाँ बहुत बावकार है। कौन तुम्हारे साथ कब हंसता है इसकी अहमियत नहीं है, ज्यादा अहम यह है कि कब तुम्हारे साथ रोता है, बहुत अहम है। मेरी नजर में ये उन लोगों में से है जिस पर जरूरत पड़ने पर तुम भरोसा कर सकती हो। बड़ा पुख्ता और बावकार आदमी है।
हाँ अगर वो ना होते तो मैं तूबा साहिबा तक कभी ना पहुंचती।
कैसे?
असल में वो आपका गालीचा जब चोरी हो गया था तो उन्होंने चोरों से वो गालीचा वापस लेने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था, इस तरह से जान पहचान हुई।
ये बड़ी अहम बात है कि एक औरत किसी मर्द पर भरोसा करे।
आप आराम करना नहीं चाह रही?
तुम मेरे पास बैठना नहीं चाहती? मैं खुश हूं रेहाना, खुदा का शुक्र अदा करती हूं कि तुम मेरे पास हो। मुझे जिंदगी में कभी भी तहफ्फुज का एहसास नहीं हुआ, हमेशा मुझे किसी हादसे का अंदेशा रहता था। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी सुकून से आश्ना नहीं होंगी। मेरी यह हालत उस वक्त से है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। बस गिने चुने उन कुछ दिनों के अलावा जब रसा के साथ थी, कभी भी मैंने सुकून, चैन, इत्मीनान का एहसास नहीं किया। हमेशा खौफ और हैरास, डर, वहशत, भयानक ख्वाब। क्या पता, शायद किस्मत में यही लिखा था कि इतने सारे गम में एक साथ उठाऊं।
एक बहुत अहम सवाल मुझे पागल किए हुए है। वो बच्चा जो आपके पेट में था, रजा साहब के बच्चे की बात कर रही हूं, उसका क्या बना?
एक मां के लिए इससे ज्यादा और कोई सख्त बात नहीं हो सकती कि वो उस बच्चे को पैदा करे जो उसके जान से ज्यादा प्यारे मरे हुए शौहर की निशानी हो।
लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर मैं हुसैन की बेटी हूं तो क्यों?
लोगों की जिंदगी में ऐसे राज भी होते हैं जिनके जाहिर होने के लिए मुनासिब वक्त की जरूरत होती है। मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरी अनकही बातों को सुनो ताकि मुझे हक दो।
Thank you.
دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ بہت دنوں سے ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی نا۔ بڑی عجیب کہانی ہے، سابق دلہا دلہن ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس بار دلہن ملزم اور دولہا تفتیش کرنے والا افسر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یقین کرو کہ اس کیس کو مجھے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے، نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں یہ بتا دیتا کہ ہماری آپس میں رشتہ داری ہے تب تو بہت ہی برا ہوتا، میں ہی شک کے دائرے میں آ جاتا۔ سیکیورٹی ادارے کا ایک اعلی افسر، شاہ مخالف ایک مذہبی دہشت گرد کا رشتہ دار ہے، میری تو عزت ہی مٹی میں مل جاتی۔ بس انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی ہے کہ میں تم سے پوچھ تاچھ کروں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم یہاں کے افسروں کے ہتھے نہیں چڑھی، میری بات تو سمجھ رہی ہو نا؟ یہاں کے افسر دوسری جگہوں سے بہت مختلف ہیں، اور پھر معاملہ چار پانچ چھوٹے موٹے سوالوں کا نہیں ہے، ایک ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ کرتے کہ تم ناکردہ گناہوں کو بھی قبول کر لیتی، جو کچھ کیا اس کی بات تو اور ہی ہے۔ معاف کرنا، مجھے دھیان نہیں رہا، تم اپنی آنکھوں کی پٹی کھول سکتی ہو۔ بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ تمہارے والد کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔
ابا جان، ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟
بیچارہ بوڑھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔
خدا کے لیے بتاؤ، میرے ابا ٹھیک تو ہے نا؟
میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، کہہ رہا تھا کہ پوچھ تاچھ کے پریشر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے، اگر زخم پک گئے تو پھر تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔
زخم کیوں؟ کیا وہ زخمی ہو گئے ہیں؟
اصل میں وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہ تک بتانے پر تیار نہیں ہے کہ وہ پرچے کہاں سے لاتے تھے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے آسیہ، بہت فکر ہے۔
خدا کے لیے کچھ کرو، جو بھی ہو جائے بالآخر ہم رشتے دار ہیں نا ہم، ہاں؟ خدا کے لیے ان کی مدد کرو۔
یقین کرو میں نے پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تمہارے ابا کا جرم بہت سنگین ہے آسیہ، شاہی حکومت کے خلاف جنگ، مسلح گروہوں کے ساتھ تعاون، دہشت گردوں کے رہنماؤں سے تعلق، اور سب سے اہم نجف سے رابطہ۔ جانتی ہو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے ایک جرم بھی اگر ثابت ہو گیا تو تمہارے ابا کا کام تمام ہے۔
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کچھ کرو، میرے ابا کو بچا لو۔